ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इसे ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक संबंधों को विकसित करना होगा। कल मुंबई में मीडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के तमाम फायदों की बातें सुनने के बाद आज दुनिया के सामने औद्योगिक नीतियों, निर्यात पर नियंत्रण तथा शुल्क को लेकर स्पर्धा के मामले प्रमुख हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशकों में ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख होगा और ये भारत की कूटनीति का एक बड़ा उद्देश्य भी है। विदेश मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का विचार हमारी विदेश नीति से भी जुड़ा है और भारत उन चंद देशों में से है जो रूस और यूक्रेन, इसराइल और ईरान, लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ के पिछड़े देशों, ब्रिक्स और क्वाड देशों के एक साथ बात करने की स्थिति में है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रतिरक्षा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में भी भारत की कूटनीति ये सुनिश्चित करने की रही है कि हमारे सुरक्षा बल और हमारा कारोबार आधिकाधिक पक्षों के साथ जुड़ा रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 25 मार्च रात 11:50 तक कर दी गई है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN पर 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में सुधार कर सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों और देश से बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित CUET परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल विधानसभा में कहा कि प्रदेश की लगभग 23% पनबिजली क्षमता का ही अब तक उपयोग हो सका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन को बताया कि जम्मू कश्मीर की पनबिजली क्षमता 18,000 मेगावाट है। इसमें से अब तक लगभग 3,540 मेगावाट का ही दोहन किया जा सका है। उन्होंने ये भी कहा कि सौर परियोजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि न होने के कारण ही राज्य में बड़ी सौर परियोजनाएं मूर्त रूप नहीं ले सकी हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रोजमर्रा के जीवन में नियमित व्यायाम और साइकिल चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज लखनऊ से फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से शरीर फिट रहता है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। उन्होंने साइकिल से 3 किलोमीटर की यात्रा भी की। कृतज्ञ राष्ट्र देश के 3 महान स्वाधीनता सेनानियों शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीनों वीर सपूतों को आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर के केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इन क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने डॉ. लोहिया को एक दूरदर्शी नेता बताया। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने फीबा पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने कल रात क्वालिफायर मुकाबले में मेजबान बहरीन को 81-77 से हराया। अब भारतीय टीम सऊदी अरब के जेद्दा में 5 से 17 अगस्त तक होने वाले कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में खेलेगी। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में दोपहर 3:30 से शुरू होगा। एक अन्य मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।